नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट तीन अमरीकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अबुधाबी में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से 12 और बच्चों की मौत। और नेपाल की संवैधानिक परिषद ने डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए नामित किया। समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट तीन अमरीकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमरीकी सेना ने इस हमले को नाकाम कर दिया। एक रिपोर्ट।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि तीनों अमेरिकी जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल आए। अमेरिकी सेना ने इन जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को नष्ट कर दिया और ईरानी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने कहा है कि वो युद्ध आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन हर हाल में अपनी सेना की रक्षा के लिए तैयार है। वहीं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने टकराव की शुरुआत की और ईरानी सेना ने केवल इसका जवाब दिया। अमेरिका और इसके अरब सहयोगियों के बीच तनाव के बाद ये हमला हुआ है। है कि सऊदी अरब ने जबरन जल डमरू मध्य मार्ग खुलवाने के अमेरिकी प्रयास में सहयोग करने से इनकार कर दिया है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
उधर सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमेरिकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए कोई स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्क लगाए जाने की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया था। अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि 1-2 मत से इस टैरिफ को अवैध बताया। ये फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए एक और कानूनी झटका है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशिमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। इस वर्ष जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और फरवरी में अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों पर प्रगति का भी जायजा लिया गया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में संविधान परिषद ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के नाम की सिफारिश की है। डॉक्टर शर्मा न्याय परिषद द्वारा भेजे गए 6 उम्मीदवारों में वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने की। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
नेपाल में पहले आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश वरिष्ठता के आधार पर होती थी, लेकिन इस बार वरिष्ठता क्रम को छोड़कर डॉक्टर शर्मा का नाम आगे बढ़ाया गया है। नेपाल के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 3 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। इस पद के लिए योग्य न्यायाधीशों में सपना प्रधान मल्ला, कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर नाहकुल सुबेदी और तिल प्रसाद श्रेष्ठ शामिल थे। न्यायिक परिषद द्वारा अनुशंसित सभी 6 व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य हैं और संविधान किसी की भी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और आयु सीमा 65 वर्ष है। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं पायल शर्मा।
रूस ने यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में आज से 10 मई तक संघर्ष विराम की घोषणा की है। ये घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की विजय की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में की गई है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सम्मेलन में कहा था कि रूस 9 मई के विजय दिवस परेड के दौरान मॉस्को के रेड स्क्वायर पर संभावित ड्रोन हमलों के डर से युद्ध रोक सकता है। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लैम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। एक रिपोर्ट।
वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम की इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और व्यापार तथा निवेश सहयोग को बढ़ाना है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। ये पिछले 15 वर्षों में किसी वियतनामी राष्ट्रपति की पहली श्रीलंका यात्रा है। राष्ट्रपति तो लैम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, संसद को संबोधित करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। इससे पहले राष्ट्रपति तो लैम ने अपनी भारत यात्रा के दौरान मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। श्री लैम ने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 6 बच्चों की मौत ढाका में और शेष की बारिसाल, खुलना, मेमन सिंह, राजशाही और सिलहट में हुई। महानिदेशालय ने बताया कि इनमें से 1 बच्चे में खसरे की पुष्टि हुई जबकि 11 बच्चों में खसरे जैसे लक्षण पाए गए। देश भर में 1238 बच्चों में खसरा जैसे संक्रमण के लक्षण हैं। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से ये संकट और गहरा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि क्रूज जहाज पर फैले हंता वायरस संक्रमण के 5 मामलों की पुष्टि हुई है जबकि 3 अन्य मामलों में संक्रमण का संदेह है। WHO के अनुसार स्थिति गंभीर जरूर है लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। ये संक्रमण क्रूज जहाज MV होंडियस से जुड़ा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट 3 अमरीकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अबुधाबी में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से 12 और बच्चों की मौत। और नेपाल की संवैधानिक परिषद ने डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए नामित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।